अध्याय दो। तमिल प्रांत के आलवार भक्त कवि। खंड एक। आलवार तमिल भाषा का शब्द है और उसका तात्पर्य कदाचित किसी भी ऐसे महात्मा से है जिसने ईश्वरीय ज्ञान एवं ईश्वरीय प्रेम के समुद्र में अवगाहन कर लिया हो और जो निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में मग्न रहा करता हो। परंतु तमिल प्रांत की ही एक परंपरा के अनुसार अब इसका प्रयोग केवल उन सहस्त्र भक्तों के लिए ही किया जाता है जो आज से लगभग 150 वर्ष पहले उस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हुए थे और जिनकी संख्या 12 की गई थी। इन भक्तों का कोई एक विशेष सांप्रदायिक क्रम नहीं था और इनकी जन्मभूमि तथा कर्म क्षेत्र का प्रसार भी वर्तमान मद्रास नगर के दक्षिण कांची व कांजीवरम से लेकर सुदूर तिन्नेवली जिला तथा श्रावणकोर राज्य के किल्लन बंदरगाह तक चला जाता है, किंतु इन सभी की आध्यात्मिक मनोवृत्ति प्रायः एक प्रकार की ही थी और एक ही भक्ति भावना से प्रेरित होकर इन्होंने एक अपूर्ण ढंग के भगवद आराधन तथा विश्व प्रेम का उन दिनों प्रचार किया था। ये अधिकतर अशिक्षित व केवल अर्ध शिक्षित मात्र थे, किंतु इन सभी ने शुद्ध एवं पवित्र जीवन व्यतीत किए। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर इन्होंने तमिल भाषा के माध्यम से एवं इस माध्यम के द्वारा अनेक सुंदर पदों की रचना की। भारत की भक्ति परंपरा के विकास प्रवाह में इन आलवार भक्तों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और सुदूर दक्षिण भारत के अंतर्गत ये आज भी लगभग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। कई तीर्थ स्थानों में इनकी मूर्तियां देव प्रतिमाओं के साथ पूजी जाती हैं और श्रीरंगम जैसे अनेक नगरों के भक्त इनकी रचनाओं के संग्रह को तमिल वेद का नाम देकर उसका पाठ वेद पाठ से भी पहले किया करते हैं। भारत की भक्ति परंपरा का मूल स्त्रोत प्रायः वैदिक ऋचाओं में ही ढूंढा जाता है, यद्यपि इधर के कतिपय विद्वानों ने उसे वैदिक युग के भी पहले से आती हुई द्रविड़ भाव धारा से जोड़ने की चेष्टा की है और इसके लिए मोहनजोदड़ो आदि से प्रमाण दिए हैं। वैदिक समय के भारतीय आर्य विविध प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना किया करते हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के उद्देश्य से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने की इच्छा से उनकी स्तुति और प्रार्थना भी करते थे। उनके ऐसे उद्गारों में प्रायः वैसी भी प्रेम भरी उक्तियां लक्षित होती हैं, जो समस्त चराचर में परमात्म दर्शन करने वाले महान व्यक्तियों की वाणी में उनके हृदय में पूर्ण शांति आ जाने पर फूट निकलती है। धौ मेरे पिता हैं, अनंत अदिति माता पिता एवं पुत्र के समान हैं। हे पिता धौ, मेरे सभी दुखों को दूर करो। यथा जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के प्रति कृपा भाव रखता है, उसी प्रकार दयालु रूप में मुझे प्राप्त हो, इत्यादि भाव को व्यक्त करने वाले अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह बात भी सिद्ध की जा सकती है कि उपनिषदों के समय में भी यह सिद्धांत प्रचलित था कि जीवात्मा परमात्मा के ही अवलंबन पर आश्रित है तथा परमात्मा मुक्त भी हो सकता है। इसके सिवाय वासुदेव श्री कृष्ण ने जो कर्मयोग संबंधी उपदेश अपने मित्र और अनुयायी अर्जुन को कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में दिए थे, उनमें भी उन्होंने भक्ति पक्ष को ही सबसे अधिक महत्व दिया। उसका ध्यान बार बार इसी बात की ओर आकृष्ट किया था, मुझमें अपना मन लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरा भजन एवं वंदना कर। मैं तुझसे प्रतिज्ञा पूर्वक बतलाता हूँ कि इस प्रकार तू मुझ में ही आ मिलेगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है। उनके उपदेशों के आधार पर एकांतिक धर्म की परंपरा चली, जो क्रमशः सात्वत, भागवत तथा पांचरात्र धर्म है। इस प्रकार यह धर्म भी कहलाई, और जो अंत में वैदिक देवता विष्णु नारायण को अपने उपास्य देव कृष्ण की जगह देकर नवीन वैष्णव धर्म में परिणित हो गई। यह समय ईसा मसीह के जन्म काल से कुछ ही दिनों इधर उधर रहा होगा, क्योंकि इसके तथा कृष्ण गोपाल विषयक इसके एक अन्य रूप के अस्तित्व का पता हमें गुप्त काल के कुछ पहले से ही मिलने लगता है, और गुप्त सम्राटों के राज्य काल में हम वैष्णव धर्म को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित पाते हैं। गुप्त काल में यह धर्म भारत के प्रायः कोने कोने तक फैल गया, और गुप्त सम्राटों तक ने अपने को परम भागवत कहलाने में धन्य माना। किंतु गुप्त साम्राज्य की अवनति के साथ साथ उत्तरी भारत में इनका भी ह्रास आरंभ हो गया। इसका प्रधान केंद्र उधर से स्थानांतरित होकर क्रमशः दक्षिण भारत की ओर चला आया। नासिक में पाए जाने वाले नाना घाट के शिलालेख से पता चलता है कि भागवत धर्म अपनी जन्मभूमि मथुरा प्रदेश से चलकर ईसा पूर्वक प्रथम शताब्दी तक ही दक्षिणी भारत में प्रवेश कर गया था। फिर कृष्णा जिले के चाइना नामक शिलालेख से यह भी प्रकट होता है कि ईसा के पीछे दूसरी शताब्दी तक यह और भी दक्षिण की ओर बढ़ गया। इसी प्रकार प्रयाग की सम्राट समुद्रगुप्त वाली प्रशस्ति में कांजीवरम के विष्णु गोप का नाम आने से इसके उक्त सन की चौथी शताब्दी तक सुदूर दक्षिण तक प्रचलित हो चुकने का अनुमान किया जा सकता है। उस ओर वर्तमान तमिल प्रांत के निवासी ईसवी शताब्दी के आरंभ में होने के बहुत पहले से ही भली भांति सभ्य थे, और कला, उद्योग, वाणिज्य आदि बातों में भी बहुत कुछ उन्नति कर चुके थे। उनका अपना धर्म उत्तरी भारत के तत्कालीन हिंदू धर्म से भिन्न था, किंतु मौर्य काल के अनंतर उस पर क्रमशः बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था। आलवार भक्तों के आविर्भाव काल तक ये दो ही धर्म वहाँ पर मुख्य धर्मों के रूप में दिख पड़ने लगे थे। आलवारों के कारण इन दोनों के प्रचार कार्य में बहुत बड़ी बाधा पड़ी। फिर शैव धर्म का भी वहाँ वैष्णव धर्म के सहयोग में होकर इनके विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर देना इनके लिए अंत में प्राण घातक सा सिद्ध हो गया। डॉक्टर भंडारकर का अनुमान है कि दक्षिण की ओर भागवत एवं वैष्णव धर्म का प्रवेश ईसा की प्रथम शताब्दी के ही लगभग हो गया होगा। तीसरी शताब्दी के एक नव प्रकाशित परिपड़ल नामक तमिल काव्य संग्रह से भी यह पता चलता है कि उक्त समय तक पांच रात्रों की आगमाश्रित विधियों के अनुसार की जाने वाली पूजा का प्रचार सुदूर मथुरा व मदुरा तक भी फैल गया था। खंड दो। आलवारों के आविर्भाव काल उनके जीवन वृत्त एवं सिद्धांतों के संबंध में प्रकाश डालने वाले प्रमाण में से अभी तक केवल दो तीन का ही पता चला है, जिसमें से सबसे इधर की उपलब्ध वस्तु आचार्यों के समय में रची गई गुरु परंपरा संबंधी पुस्तकें हैं। इनके द्वारा तात्कालीन आचार्यों से लेकर कतिपय आलवारों तक के संक्षिप्त परिचय बहुत कुछ काल्पनिक एवं पौराणिक ढंग से लिखे गए मिलते हैं। दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्थरों व धातुओं पर अंकित कुछ समसामयिक लेखादि हैं, जिनसे इस विषय के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। परंतु इन सबसे उपयोगी वस्तु उस तीसरे प्रकार का प्रमाण है, जो नालाईर प्रबंधम अथवा आलवारों की रचनाओं के 4,000 का संग्रह रूप में पाया जाता है, जिसका संपादन तथा प्रचार सर्वप्रथम सन 920 ईस्वी तक जीवित रहने वाले आचार्य नाथ मुनि ने किया था। इस ग्रंथ में संग्रहित पदों के आधार पर इन आलवारों के धार्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक सिद्धांतों का परिचय मिल जाता है। फिर भी इनके द्वारा हमें आलवारों के समय तथा जीवन चरित्र के ऐतिहासिक विवेचन में प्रायः कुछ भी सहायता नहीं मिलती। इसी कारण इस विषय के विद्वानों में अभी तक मतभेद चला आता है। वैष्णवों की प्रचलित परंपरा इनका समय यदि ईसवी सन के पूर्व 4203 से लेकर 2706 तक मानती है, तो दूसरी ओर इन्हें पाश्चात्य विद्वान रामानुजाचार्य के मृत्युकाल अर्थात सन 1137 ईस्वी के भी अनंतर प्रकट होने वाले ठहराते दिख पड़ते हैं। किंतु तथ्य कदाचित और ही है। सभी बातों पर विचार करते हुए अब केवल दुराग्रही दलों को छोड़कर कदाचित किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं हो सकती कि वे आलवार भक्त रामानुजाचार्य क्या नाथ मुनि तक के भी पूर्ववर्ती अवश्य रहे होंगे। परंतु उपर्युक्त निर्णय को स्वीकार कर लेने पर भी इन आलवारों का क्रम समयानुसार निर्धारित करना कठिन बना रहता है। कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य पिल्लन को नम आलवार के सहस्त्र पदों पर टीका लिखने का भार सौंपा था और उसने इस कार्य का संपादन करते समय एक संस्कृत श्लोक द्वारा सभी आलवारों के नाम गिनाकर उनकी वंदना की। श्लोक में आए हुए आलवारों के नाम इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं, जैसे भूतम वा भूततार सर्वा पवाय गई महद्वा पे भट्टनाथ वा विष्णु चित्त भक्ति सागर वा तिरु मलिसई कुलशेखर योगी वह वा तिरुपन्न भक्तान घ्री रेणु वा तोंडर डिप्पेणे परकाल वा तिरुमंगई यतीन्द्र मिश्र वा मधुर कवि तथा परांकुश मुनि वा नम्म आलवार। ये नाम संख्या में केवल 11 ही आते हैं, क्योंकि आंडाल व गोदा का नाम इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य ही श्री रंगम निवासी आमुंडन नामक एक प्रशिष्य ने उक्त प्रबंधम का संपादन करते समय सभी आलवारों के नाम एक विशेष क्रम के अनुसार गिनाए हैं, किंतु उस तालिका में भी नम्र तथा मधुर कवि के नाम नहीं आए हैं। इसके सिवाय उनका क्रम भी उपर्युक्त क्रमों से भी मिलता नहीं जान पड़ता। अतएव डॉक्टर कृष्ण स्वामी एंगर ने इन तीन क्रमों एवं सूचियों की पारस्परिक तुलना करके यह परिणाम निकाला है कि उनमें दिख पड़ने वाली भिन्नता केवल श्लोक रचना की कठिनाई अथवा लिखने के विशेष उद्देश्य के कारण ही आ गई है। वास्तव में उन सबका आदर्श वही एक मूल क्रम है जिसका अनुसरण वेदांत देशिकाचार्य ने भी अपनी 12 कविताओं द्वारा किया है। वेदांत देशिकाचार्य का क्रम और उनके दिए हुए नामों की सूची कोई अन्य अधिक प्रामाणिक आधार न मिल सकने के कारण आज भी प्रायः सर्वसम्मत समझी जाती है। उसे डॉक्टर भंडारकर के ग्रंथ अनुसार यहाँ पर अविकल रूप में उद्धृत किया जाता है। श्रेणी तमिल नाम संस्कृत नाम। श्रेणी के अंतर्गत प्राचीन में तमिल नाम पहला है पवाए गई आलवार, इसका संस्कृत नाम है सरोयोगीन। दूसरा है तमिल नाम भूततार आलवार, इसका संस्कृत में दूसरा नाम है भूतयोगिन। तमिल नाम तीसरा है पे आलवार, और इसका संस्कृत में तीसरा नाम है महधोगिन व भ्रांत मोगिन। चौथा तमिल में तिरुमलिशई आलवार है और संस्कृत में इसका चौथा नाम भक्तिसार। तमिल में पांचवा नाम है नम्न आलवार, इसका संस्कृत में पांचवा नाम है षष्ठ कोप। श्रेणी मध्यवर्ती, इसका तमिल नाम है छठवां मधुर कवि आलवार और संस्कृत में छठवां मधुर कवि। सातवां है कुलशेखर आलवार, संस्कृत में सातवां है कुलशेखर। तमिल में आठवां है पेरी आलवार और संस्कृत में आठवां है विष्णुचित्त। तमिल में नवा है आंडाल व गोदा आलवार और संस्कृत में नवा है गोदा। अब श्रेणी अंतिम, इसके अंतर्गत तमिल में दसवां है तोडर डिपोडी आलवार और संस्कृत में दसवां है भक्तांग्री रेणु। तमिल में ग्यारहवां है तिरुपन आलवार और संस्कृत में ग्यारहवां है योगी वाहन। तमिल में बारहवां है तिरुमंगई आलवार और संस्कृत में बारहवां है परकाल। प्राचीन कहे जाने वाले आलवारों का समय सबसे अधिक अंधकार में है, किंतु डॉक्टर ए यंगर ने तमिल भाषा के किन्हीं पिंगल तथा व्याकरण ग्रंथों के भाष्यों से उद्धृत वाय गेयर नामक कवि के पदों पर विचार करके यह परिणाम निकाला है कि ये वाय गेयर वस्तुतः वाय गई आलवार ही थे, जो अपने जीवन काल के कुछ ही दिनों अनंतर एक देवता की भांति माने जाने लगे थे। उनके अभी थोड़े दिन पहले प्रकाशित इन्नी लई नामक एक काव्य संग्रह के भी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका समय ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतर्गत किसी समय मान लेना अनुचित नहीं कहा जाएगा। प्रसिद्ध है कि पवाई गई कांची नगर के नगर में स्थित विष्णु मंदिर के निकटवर्ती किसी तालाब में एक कमल पुष्प पर उत्पन्न हुए थे। पेरी आलवार का जन्म भी उसी प्रकार माइलापुर के किसी कुएं में उसके दूसरे ही दिन एक लाल कमल से होना बतलाया जाता है। उस स्थान से कुछ मील दक्षिण दिशा की ओर स्थित महाबलीपुरम के आसपास किसी एक अन्य फूल से प्रकट होने की कहानी भूततार आलवार के विषय में भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये तीनों आलवार आपस में समसामयिक समझे जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा भी प्रचलित है कि किसी दिन भारी वृष्टि होते समय संयोगवश ये तीनों तिरुक्को विलूर नामक नगर के किसी छप्पर के नीचे आ मिले और आपस में कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे कि इन्हें किसी एक चौथे भी व्यक्ति के आने की आहट मिली और परीक्षा कर चुकने पर पता चला कि वह व्यक्ति स्वयं विष्णु भगवान थे। अतएव इस घटना से प्रसन्न होकर उन तीनों ने उसके दूसरे दिन तमिल भाषा में 100-100 पदों की रचना कर डाली। ये 300 पद उपर्युक्त प्रबंधम में क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तिरुबंदादि के नाम से प्रसिद्ध है। पवाई गई आलवार की कतिपय अन्य पद इन्नी लई में भी संग्रहित है। उनमें प्रसिद्ध कुरल की भांति नीति जैसे विषयों की भी चर्चा की गई है। तिरुमलिशई आलवार के जन्म का भी इसी प्रकार उपर्युक्त तीनों आलवारों के तीन ही महीने पीछे पूर्णमल्ली के निकट होना प्रसिद्ध है। तिरुमलिशई का एक छोटा सा गांव था जिसके नाम पर इस आलवार का भी नाम दिया जाता है। इस आलवार की उत्पत्ति किसी ऋषि एवं अप्सरा के संयोग से हुई थी और माता के परित्याग कर देने पर इसे किसी नीच कुलोत्पन्न मनुष्य ने अपना लिया था। ये सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे ऐसा परंपरा अनुसार प्रसिद्ध है, परंतु ये एक अपने पद में स्वयं कहते हैं, मेरा जन्म किसी द्विजातीय कुल में नहीं हुआ था और ना मैं चारों वेदों का जानने वाला हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को भी नहीं जीत पाया है। इसी कारण हे भगवान, मुझे तुम्हारे प्रकाशमय चरणों के अतिरिक्त अन्य किस भी बात का भरोसा नहीं है। तिरुमलिसई का कन्निकन नामक एक शिष्य भी शूद्र कुल का था। कहा जाता है कि इन दोनों को किसी पल्लववंशी राजा ने देश निकाले का दंड दिया था। तिरुमलिसई तब से घूम घूम कर चिदंबरम, कुंभाकोनम आदि स्थानों की यात्रा करते फिरे। अंत में उक्त राजा के प्रसन्न हो जाने पर उनकी मृत्यु कदाचित कुंभाकोनम में रहते समय ही हो गई। इनकी रचनाएं कुल मिलाकर 200 से भी अधिक संख्या में पाई जाती हैं। उनमें भक्ति के सिवाय कुछ अन्य विषयों के भी पद्य सम्मिलित हैं। इनके एक पद्य में श्रमण व जैन अनजान है, बौद्ध भ्रमजाल में पड़े हैं, शैव निर्दोष अज्ञानी है, विष्णु की पूजा न करने वाले निम्न श्रेणी के लोग हैं से पता चलता है कि इनके समय में उधर इन सभी धर्मों का प्रचार हो रहा होगा। खंड 3। तिरुमलिसई तक आकर प्राचीन श्रेणी के आलवारों का अंत हो जाता है और इसके कुछ पीछे प्रकट होने वाले दूसरी श्रेणी के लोगों में क्रमानुसार सर्वप्रथम नाम नम्म आलवार का आता है, जिन्हें अधिकतर सठ कोपाचार्य भी कहते हैं। नम्म आलवार व सठ कोपाचार्य वास्तव में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में सबसे अधिक चर्चा भी हुई है, परंतु इनके भी समय आदि का ठीक ठाक भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनके जीवन वृतांत का भी वर्णन प्राचीन पौराणिक परंपरा अनुसार ही दिख गया पड़ता है। अनुश्रुति के अनुसार इनका जन्म तिन्नीवली जिले के कुरुरकूर अथवा आजकल के आलवार तिरु नगरी कहे जाने वाले नगर के एक शूद्र कुल में हुआ था। इनके संबंध में किए गए कई भिन्न भिन्न अनुमानों की आलोचना करते हुए डॉक्टर ये एंगर ने इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि इनका समय 6वीं ईस्वी शताब्दी के मध्य भाग में रखना ठीक है। गुरु परंपरा इनके पिता कारियर की जाति का नाम वेल्लाल ठहराती है और यह भी कहा जाता है कि वे अपने गांव के मुखिया थे। बालक नम्म ने जन्म लेने के अनंतर अपनी आंखें नहीं खोली थी और न अपनी माता का दूध पिया व रोया ही था। अतएव उसके माता पिता भयभीत होकर उसे 12वें दिन किसी निकटस्थ विष्णु मंदिर में उठा ले गए। उसका नाम मालन अर्थात मरण रख कर उसे किसी इमली के पेड़ के तले अथवा उसके खोखले में डाल आए। कहते हैं कि बालक वहाँ पर सभी से 16 वर्ष तक बिना किसी पालन पोषण के ही दिख पड़ा। विष्णु भगवान की कृपा से उसकी रक्षा किसी अलौकिक ढंग से होती रही। मंदिर के सामने किंतु इमली के जड़ के निकट ही उसका पौड़ते हुए जाना तथा वहां पहुंचकर योग मुद्रा में बैठना भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अंत में उसे भगवान ने प्रसन्न होकर अपूर्व शक्ति प्रदान कर दी। प्रवाद है कि बालक के 16वें वर्ष में वहां पर एक अन्य महापुरुष भी आए थे। इनका जन्म तिरुकुलूर व गांव के तिरुकुलूर नामक गांव के किसी सामवेदी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये वेदादि का सांगोपांग अध्ययन करके अपने घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, परंतु उत्तरी भारत में भ्रमण करते समय जब वे अयोध्या पहुंचे तो कहीं से अपनी मातृभूमि की ओर दृष्टि डालते समय रात को इन्हें दक्षिण दिशा में कोई विचित्र ज्योति स्तंभ दिखाई पड़ा। इस बात का अनुभव इन्हें उसके दूसरे दिन भी हुआ तो ये आश्चर्यचकित होकर वहाँ से वापस चल पड़े। तत्पश्चात उपर्युक्त रहस्य का पता लगाते लगाते जब ये तिरुकुलूर आए और गांव वालों से सूचना पाकर इमली के निकट पहुँचे तो इन्हें ज्योति के मूल स्रोत का वास्तविक परिचय मिला। इन्हें स्पष्ट हो गया कि वह ज्योति वहाँ पर वर्तमान मरण के ही शरीर से स्फुरित हो रही है। इस कारण इन्होंने कौतूहलवश एक पत्थर उठाकर उसके सामने पटक दिया। उसका शब्द सुनते ही मरण की आंखें खुल गईं और दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा छिड़ गई। अंत में उस बातचीत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये भी वहीं पर ठहर गए और अपने को मरण का शिष्य समझते हुए उसकी बातें सुनने लगे। मरण पर भी इनका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और आनंद के मारे उनके मुख से पदों का क्रम धारा प्रवाह से चलने लगा। कहना न होगा कि उस मरण का नाम ही आगे चलकर नम सठकोप व परांकुश भी पड़ गया। ये दूसरे व्यक्ति उस आचार्य के शिष्य रूप में प्रसिद्ध मधुर कवि आलवार के नाम से विख्यात हुए। मधुर कवि अपने आचार्य के मुख से उक्त प्रकार निकालते समय जाने वाले पदों को यथाक्रम लिपिबद्ध करते गए थे। वे ही अब तक नम आलवार की रचनाओं के नाम से संग्रहित है। परंतु इन दोनों आलवारों के पारस्परिक वार्तालाप तथा एक दूसरे से लाभ उठाने की बात छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं पता चलता। नम आलवार की रचनाओं में अनेक तीर्थ स्थानों के नाम पर इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिन पर विचार करने से पता लगाया जा सकता है कि ये भी बहुत से अन्य आलवारों की भांति उन पवित्र स्थानों की यात्रा किए होंगे। यह धारणा इनके द्वारा कतिपय देवताओं के प्रति प्रदर्शित भक्तिभाव तथा इनकी विनयों की विशिष्ट शैली के आधार पर पुष्ट भी हो जाती है। फिर भी जनश्रुति इस बात को स्वीकार नहीं करती हुई जान पड़ती। यह कहना भी केवल कोरे अनुमान पर ही आश्रित समझ पड़ता है कि ये अपने जीवन भर अविवाहित अवस्था में रहे। अंत में इसकी मृत्यु केवल 35 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। मधुर कवि इनके उपरांत भी कई वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने अपने गुरु की जन्मभूमि में ही इनकी एक मूर्ति की स्थापना कर इनकी पूजा के लिए समुचित नियमों की व्यवस्था कर दी। मधुर कवि ने इनके उत्तम पदों का पाठ करने की भी प्रथा चलाई थी। इसका प्रचार तथा संपादन आगे चलकर तिरुमंगई आलवार एवं नाथ मुनि ने भी किया था। नम आलवार की रचनाएं प्रायः 4 प्रकार की पाई जाती हैं और उनमें से कुल की संख्या लगभग 1300 पदों तक पहुंचती है। वे सभी प्रबंधम नामक प्रसिद्ध संग्रह में सुरक्षित हैं और उनमें सबसे अधिक महत्व तिरुवायमोली को दिया जाता है। तिरुवायमोली को उक्त प्रबंध के अंतिम अर्थात चौथे भाग में स्थान दिया गया है और उसके 10 दशकों में 1102 पद आए हैं। स्वयं मधुर कवि ने केवल 10 पदों की रचना की है और उनमें भी प्रधानता नम की प्रशंसा में लिखे गए पद्य को ही मिलती है। नम आलवार की रचनाओं के विषय में कहा जाता है कि उनमें चारों वेदों का सार तत्व आ गया है। आलवारों की इस मध्यवर्ती श्रेणी के अंतर्गत तीसरा नाम क्रमानुसार कुलशेखर का आता है, जिन्हें वैष्णव गुरु परंपरा अनुसार भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लगे हुए कौस्तुभ मणि का अवतार समझा जाता है। इनकी रचनाओं में आए हुए प्रसंगों के अनुसार इनके जीवन काल के विषय में अनेक प्रकार के अनुमान किए जाते हैं, किंतु बहुत से अन्य प्रमाणों की भी दृष्टि से उनकी आलोचना करते हुए डॉक्टर ये एंगर इनका समय भी 6वीं शताब्दी में ही ठहराते हैं। कुलशेखर का जन्म श्रावणकोर राज्य के अंतर्गत कोल्ली अथवा किवलन नामक नगर में हुआ था और इनके पिता वहीं के राजा दृढ़व्रत थे। पहले इन्हें संस्कृत एवं तमिल भाषा की शिक्षा दी गई और अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेने पर इन्हें शासन का भार भी सुपुर्द किया गया, परंतु इनका झुकाव अपने बचपन से ही वैष्णव धर्म की ओर अधिक रहा और ये रामायण का पाठ बहुत पसंद करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब ये रामायण पढ़वा कर सुन रहे थे तो खरदूषण आदि अनेक राक्षसों के विरुद्ध श्री रामचंद्र के अनेक अकेले खड़े होने का प्रसंग आते ही तन्मयता के कारण इन्होंने अपनी सेना को भगवान की सहायता के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। उनके मंत्रियों को ऐसी विकट स्थिति संभालने के लिए यत्न करने पड़े। इसी प्रकार एक दूसरी बार ये अशोक वाटिका में घिरी हुई सीता को बचाने के लिए लंका की ओर चल पड़े थे और समुद्र पार करते समय कठिनाई से रोके गए। वैष्णव के प्रति भी कुलशेखर की बड़ी आस्था थी। एक बार जब इनके मंत्रियों ने इन्हें उनसे विरत करने की इच्छा से इनके कतिपय अंतरंग वैष्णव साधुओं पर चोरी का दोषारोपण किया तो ये सहसा कह उठे कि नहीं नहीं, वैष्णव होकर कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। और उस बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अपना हाथ किसी ऐसे पात्र में ही डाल दिया जिसमें विषधर सर्प रखे हुए थे, किंतु इन्हें कोई क्षति न हो सकी। थोड़े ही दिनों तक राज्य शासन करने के उपरांत इनका मन उस कार्य से उचकने लगा। अतएव इन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री रंगम तीर्थ के निकट भगवान की शरण में रहने की ठान ली और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत में मुकुंद माला तथा तमिल में भी पदों की रचना की। कहते हैं कि रंगनाथ जी द्वारा प्रेरित होकर ये फिर वहाँ से कांची होते हुए तिरुपति धाम चले गए और वहाँ से लौटकर ये अन्य वैष्णव तीर्थों की भी यात्रा करते हुए दक्षिणी आरकाट जिले के किसी नगर में आए जहाँ इन्होंने केवल 25 वर्षों की ही अवस्था में प्राण त्याग कर दिया। प्रबंधम में इनके 103 पद संग्रहित हैं, जिन्हें पेरुमल तिरुमोली कहते हैं और जिनके प्रत्येक दशक में इन्होंने कुछ न कुछ अपने विषय में भी कहा है। इनके इन वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये किवलन में उत्पन्न हुए थे तथा कोली, मदुरा एवं कांगू पर इन्होंने शासन किया था। इनके दास्य भाव वाले गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस मध्यवर्ती श्रेणी के दो अंतिम आलवार पेरी और उनकी पुत्री आंडाल नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर ये यंगर ने इन दोनों की रचनाओं की भी अंतरंग परीक्षा करके इनका समय कुलशेखर के निकट अथवा 7वीं शताब्दी तक मान लिया है। पेरी आलवार जाति के ब्राह्मण थे और इनका जन्म मदुरा जिले के स्त्री बिल्ल पुतूर नामक एक गांव में हुआ था। ये बहुत कम पढ़े लिखे थे और इसीलिए इनका मुख्य काम अपनी छोटी सी फुलवारी से फूलों को चुनकर और उनकी माला गूंथकर स्थानीय मंदिर के बट पत्र पर लेटे हुए बाल मुकुंद पर नित्यशः चढ़ा देना मात्र था। कहते हैं कि एक दिन इन्हें रात्रि के समय स्वप्न में यह आदेश मिला कि तुम पांडेवंशी राजा वल्लभ देव के दरबार में मदुरा चले जाओ और वहां जाकर शास्त्रार्थ में भाग लो। इन्हें शास्त्र का बहुत ही कम ज्ञान था, किंतु भगवान की इस प्रेरणा से विवश होकर ये वहां पहुंच गए और वहां के सभी दिग्गज पंडितों को हराकर इन्होंने राजा से द्रव्यादि के अतिरिक्त भट्टेनाथ की उपाधि भी प्राप्त कर ली। फिर भी उस प्रतिष्ठा को केवल भगवान की कृपा का ही परिणाम समझकर इन्होंने अपने प्राप्त धन को मंदिर की सेवा में अर्पित कर दिया और ये दूनी भक्ति के साथ अपने कार्य में लग गए। भगवान विष्णु के प्रेम में मग्न होकर इन्होंने अपनी उनकी तिरुप्पल लांडू नाम नामक प्रसिद्ध स्तुति की रचना की और श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करते हुए इन्होंने तिरुमोली नामक पदावली भी प्रस्तुत की। पेरी आलवार की कुल कविताएं केवल 50 के लगभग हैं। उनमें वैष्णव धर्म के गंभीर विषयों के सिवाय छंद प्रयोग संबंधी विचित्रताओं के भी उदाहरण हैं। इनकी वात्सल्य रस भरी भक्तिपूर्ण कविताएं विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं और उनमें हिंदी के सूर्यदास के पदों के भाव भी मिलते हैं। आंडाल और आलवार की उत्पत्ति। पेरी आलवार द्वारा अपनी फुलवारी की भूमि को बोढ़ते समय किसी तुलसी वृक्ष के निकट हुई थी, जिसके संबंध में तथ्य का पता लगाना बहुत कठिन है, किंतु इतना अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि उस बालिका का पालन पोषण पेरी आलवार के ही घर हुआ था, जिस कारण वह पीछे की उनकी पुत्री कहलाकर प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि पेरी द्वारा माला गूथने के लिए चुनकर लाए गए फूलों के साथ बालिका आंडाल बहुधा खिलवाड़ किया करती थी और गुथी हुई माला को उठाकर कभी कभी अपने गले में भी डाल लेती थी। एक दिन इस प्रकार श्रृंगार करते समय उसे पेरी ने देख लिया। इस विचार से क्षुब्ध होकर कि एक बार पहनी गई मालाएं कदाचित भगवान पर फिर नहीं चढ़ाई जा सके, ये झुंझला उठे, परंतु अंत में इन्हें जान पड़ा कि भगवान को आंडाल द्वारा पहनी गई मालाएं ही अधिक पसंद हैं, और तब से ये सभी मालाएं पहले आंडाल को पहना ली जाने लगी। इस बात का प्रभाव पीछे उस बालिका के कोमल हृदय पर ऐसा पड़ा कि वह कृष्ण के प्रति उत्तरोत्तर आकृष्ट होती गई। उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का फिर ऐसा संचार हुआ कि वह अपने को श्री कृष्ण के मिलन की भूखी किसी गोपी का अवतार समझने लगी। विवाह के योग्य हो जाने पर जब इस विषय की चर्चा चली तो आंडाल ने अपने गुरुजनों से स्पष्ट कह दिया, मैं श्री रंगम के भगवान श्री रंगनाथ को छोड़कर दूसरे किसी को वरण नहीं कर सकती। किसी स्वप्न द्वारा इस बात का समर्थन भी हो जाने पर पेरी आलवार इसे श्री रंगम के मंदिर में पहुंचा आए। वहां पर इसे उन्होंने वैवाहिक विधियों के साथ भगवान को अर्पित कर दिया। यह भी प्रसिद्ध है कि वहां जाकर मूर्ति से मिलते ही आंडाल अचानक अंतर्निहित हो गई और सभी लोग आश्चर्य करते रह गए। आंडाल की कहानी राजस्थान की प्रसिद्ध मेड़तणी मीराबाई संबंधी प्रचलित कथाओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इनके पद्य भी उनकी कविताओं की ही भांति प्रेम भाव में सराबोर होने के कारण परम प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। खंड 4। आंडाल से अनुमानतः लगभग 100 वर्ष पीछे तृतीय अर्थात अंतिम श्रेणी के आलवारों का समय आरंभ होता है। ये आलवार संख्या में केवल 3 थे और इनमें से भी पहले 2 के विषय में अधिक पता नहीं चलता। पहले अर्थात तोडर डिप्पोडी के संबंध में केवल इतना प्रसिद्ध है कि उनका जन्म मांडागुडी नामक एक गांव में हुआ था। उनका पहले का नाम विप्र नारायण था। पेरी आलवार की ही भांति उनका भी मुख्य काम श्री रंगम के विष्णु भगवान के निमित्त फूल चुनकर उनसे माला तैयार करना था। ये उस मंदिर में इसी काम के लिए नौकर के समान कदाचित रखे भी गए थे। अपनी पूर्णावस्था में ये देवादेवी नाम की किसी वैश्या में फंसकर व्यसनी भी हो गए थे, किंतु भगवान रंगनाथ की कृपा से इन्हें किसी प्रकार का बोध हो गया। अंत में सुधर जाने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर उसे तोडर डिपोडी अर्थात भक्तांग्री रेणु का कर दिया। प्रबंधम में इनकी केवल 2 ही रचनाएं संग्रहित हैं। उन दोनों में इनकी विष्णु भक्ति के साथ साथ बौद्धों जैनों तथा शैवों के प्रति शत्रुता के भाव लक्षित होते हैं। इस श्रेणी के दूसरे आलवार तिरुपन के लिए इसी प्रकार प्रसिद्ध है कि अपनी बाल्यावस्था में वे पहले पहले त्रिचिन्नापल्ली जिले के उरेवपुर व वोरीउर नामक गांव के किसी धान के खेत में एक पंचम जाति के निःसंतान व्यक्ति द्वारा पाए गए थे, परंतु अपने पालन पोषण करने वाले की नीची जाति होने पर भी इनके हृदय में भक्ति के भाव आरंभ से ही जागृत होने लगे। अस्पृश्यता के कारण श्रीरंगम के द्वीप स्थित मंदिर पर मंदिर तक पहुंच न सकने पर भी ये कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर खड़े होकर वहीं से भगवान की स्तुति करके संतोष करने लगे। वहां पर खड़े खड़े ये बहुधा इस प्रकार आनंद विभोर हो जाते कि इन्हें अपने शरीर तक की सुध नहीं रहती थी। एक दिन जब ये अपनी वीणा बजाते हुए इसी भांति भजन में लवलीन थे कि भगवान के स्नानार्थ जल लाने के लिए वहां लोक संज्ञा महामुनि नाम के पुजारी पहुंच गए। प्रेम मग्न तिरुपन को वहां से हटाकर उन्होंने अलग करना चाहा, परंतु उनकी बातों की ओर जब इनका कुछ भी ध्यान नहीं गया तो उन्होंने एक पत्थर फेंका जिससे चोट खाकर ये नम्रता के साथ हट गए। उधर महामुनि के जल को श्री रंगनाथ जी ने ग्रहण नहीं किया और उन्हें आदेश दिया कि अपवित्र समझे जाने वाले तिरुपन को तुम शीघ्र अपने कंधे पर बिठा लाओ। तिरुपन पर भी इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रसन्न होकर उन्होंने कई पदों की रचना कर डाली। मरने के समय इनकी अवस्था 50 वर्ष की थी। तिरुमंगई सबसे अंतिम आलवार थे और इनका समय सभी बातों पर विचार करते हुए 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अथवा 8वीं के उत्तरार्ध में रखा जा सकता है। इनका जन्म तंजोर जिले के तिरुपुरी मालूर नगर के किसी शूद्र कुल में हुआ था और इनके बचपन का नाम नील था। इनके पिता तत्कालीन चोल वंशी के सेनापति थे और ये भी उक्ति करते करते अंत में उसी महाराज के सेनापति और उपासक हो गए थे, उपशासक हो गए थे। जब इनकी महाराज से नहीं पटी तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और लुटेरे की जीविका स्वीकार कर ली। इनके वैष्णव धर्म की ओर झुकने का कारण यह कहा जा सकता है कि एक बार इन्होंने किसी कुमुदवल्ली नामक की अप्सरा से विवाह करना चाहा। इस संबंध की स्वीकृति के उपलक्ष्य में इन्होंने प्रतिदिन एक वर्ष तक 1008 वैष्णव के खिलाने की प्रतिज्ञा की। तदर्थ द्रव्य जुटाने के लिए ये बराबर निरसंस व्यवहार करते रहे। एक बार जब ये किसी ब्राह्मण के वेश में नारायण को पाकर उनसे मिले हुए अपार धन राशि को न उठा सके तो विवश होकर उनके शरणापन्न हो गए। तब से ये घूम घूम कर तीर्थ यात्रा करने लगे और सिद्धाली या शियाली तक जाकर इन्होंने प्रसिद्ध शैव विद्वान संबंधर को परास्त कर दिया तथा वहां से परकाल अर्थात विरोधियों का विनाशक की उपाधि प्राप्त की। श्रीरंगम पहुंचने पर इन्हें स्वप्न हुआ कि तुम रंगनाथ के मंदिर का उद्धार करो, अतएव द्रव्य एकत्र करने की इच्छा से इन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी लूट खसोट आरंभ कर दी। कहा जाता है कि इसी उद्देश्य से इन्होंने धोखा देकर अखरोट से लदे हुए किसी जहाज का माल हस्तगत कर लिया। तंजोर जिले के नेगापट्टम नगर में पहुंचकर वहां की स्वर्णमयी मूर्ति को तोड़ ये सभी माल उठा लाए। मंदिर का स्वर्ण निकालते समय इन्होंने वहां के कारीगरों को पूरा द्रव्य नहीं दिया था और उन्हें रुष्ट कर दिया था। इस कारण जब वे लोग इन्हें तंग करने लगे तो इन्होंने बिगड़कर उनमें से कई व्यक्तियों को कावेरी नदी में डुबा देने की आज्ञा दे दी और उनके संबंधियों से कह दिया कि उन्हें अब स्वर्ग मिल गया होगा। मंदिर का जीर्णोद्धार कर ये तीरु कुरुंगुडी चले गए और वहीं पर इनका प्राणांत हो गया। तिरुमंगई ने नम्म आलवार को छोड़कर कदाचित सबसे अधिक पदों की रचना की है, किंतु इनकी रचनाएं उतनी सुंदर नहीं हैं। खंड 5। आलवारों के उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से भी पता चलता है कि वे वास्तव में बहुत बड़े भक्त और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे होंगे। उनमें केवल तिरुमंगई आलवार ही ऐसे हैं जिनकी संस्कार जन्य क्रूर मनोवृत्ति उन्हें मानवता की दृष्टि से बहुत उच्च स्थान नहीं दिला सकती। फिर भी उनका पवित्र उद्देश्य और उनकी प्रबल एकांत निष्ठा हमें विवश करेंगी कि उन्हें भी किसी न किसी रूप में कुछ महत्व प्रदान किया जाए। एकाध आलवारों के अतिरिक्त प्रायः सभी साधारण श्रेणी के ही मनुष्य थे और सांस्कारिक वैभव आदि की और उनसे उन्हें बहुत कम सहायता मिल सकी थी, किंतु उनकी लगन अपने इष्ट के प्रति निरंतर बनी रही और केवल इसी एक भावना द्वारा बल संचय और ये अपने क्षेत्र में उत्तीर्ण हो गए। इनके जीवन की झलक हमें स्वभावतः एकांगी रूप में ही मिलती है और समय के विस्तार एवं सामग्रियों की कमी के कारण हम उसे भरपूर नहीं देख पाते। इनकी पूर्वोक्त तीन श्रेणियों में से प्राचीन एवं मध्यवर्ती के बीच 300 से भी अधिक वर्षों का अंतर पड़ता है। यह पता नहीं चलता कि इन दोनों का संबंध प्रकट करने वाली कोई विशेष बात रही वा नहीं, परंतु आंडाल तथा तोडर टिप्पो डी के समयों के बीच उतना अंतर लक्षित नहीं होता। मधुर कवि द्वारा प्रचलित किए गए नम्म आलवार की पूजा और प्रतिष्ठा संबंधी आंदोलन के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि इन अंतिम दो श्रेणियों के आलवारों के मध्य कोई परंपरागत संबंध रहा होगा। तिरुमंगई के अंतर्गत आलवारों के युग का समाप्त हो जाना माना जाता है। ईसा की 10वीं शताब्दी से उन आचार्यों का युग आरंभ होता है जो बहुत कुछ इन आलवारों द्वारा ही प्रभावित थे। आलवारों तथा आचार्यों में एक महान अंतर भी था। वे इनकी भांति केवल अशिक्षित व अर्ध शिक्षित मात्र नहीं थे, अपितु शास्त्रों से पूर्ण अभिज्ञ शास्त्रार्थ पटु तथा योग्य ग्रंथकार भी थे। उन्हीं द्वारा किए गए यत्नों के कारण वैष्णव धर्म उत्तरी भारत में फिर एक बार प्रतिष्ठित हो सका। प्रसिद्ध है कि आलवारों की रचना का संग्रह सर्वप्रथम रघुनाथाचार्य व नाथमुनि ने आरंभ किया था। वे ही प्रथम आचार्य थे और उनका आविर्भाव काल संभवतः 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। नाथमुनि के उपरांत उनके पौत्र यमुनाचार्य ने भी उन पदों का महत्व बतलाकर उनका प्रचार किया। इस प्रकार भी उत्तराधिकारी की सी श्री रामानुजाचार्य के समय अथवा अनुमानतः ईसवी सन 1100 तथा 1500 के मध्यकाल में उक्त आचार्य के आदेशानुसार प्रबंधम के वर्तमान रूप का संपादन किया गया। इस प्रबंधम व नाडाईर प्रबंधम में ही आलवारों की सभी उपलब्ध रचनाएं संग्रहित हैं। तमिल प्रांत में यह संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है और बड़ा होने पर भी वहां के अनेक वैष्णवों के कंठाग्र बना रहता है। इसके मुख्य अंशों में पैरी की रचना तिरुपल लांडू तथा आंडाल की तिरुपवाई है, जिनके पाठ का प्रत्येक दिन होना परमा आवश्यक है। पहले उपर्युक्त रचनाओं के केवल मूल का पाठ हुआ करता था, किंतु अब संपूर्ण प्रबंधम पीछे लिखे गए भाष्यों के साथ भी पढ़ा जाता है। कभी कभी प्रबंधम को पढ़ने के लिए विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और वे आंडे यार कहलाते हैं। ये अंडे यार मंडपों के सामने खड़े होकर पदों का उच्चारण कर एक निश्चित ढंग से किया करते हैं, फिर भी प्रबंधम का पाठ कोई भी वैष्णव कर सकता है और इसके लिए वर्ण व जाति का कोई बंधन नहीं है। प्रबंधम के अंतर्गत आई हुई रचनाओं के प्रमुख विषय आवागमन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के प्रति की गई प्रार्थना के भाव, शुद्ध प्रेम तथा श्रद्धा तथा कृष्णावतार की विविध लीलाओं का विशुद्ध वर्णन जान पड़ते हैं। परंतु बहुत से पदों में हिंदू धर्म संबंधी अनेक प्राचीन ग्रंथों के अन्य विषय भी आ गए हैं, जिनसे पता चलता है कि इनके रचयिताओं का ज्ञान उनके अनुभव के सिवाय उनके बहुत कुछ बहुश्रुत होने व सत्संग होने करने पर भी आश्रित रहा होगा। इस प्रकार इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इनमें तोडर डिप्पोडी की प्रसाद पूर्ण सुंदर पंक्तियों से लेकर नम्म आलवार के गंभीर भाव के भरे पद तथा कुलशेखर की कलापूर्ण कविताओं से लेकर आंडाल के प्रेमोन्माद प्रेरित मधुर गीत भी सम्मिलित हैं। इनमें लक्षित होने वाले दार्शनिक सिद्धांतों का महत्व इससे जाना जा सकता है कि वास्तव में इन्हीं की चिद्द्विशिष्ट ब्रह्म संबंधनी भावना एवं प्रेम तथा प्रवृत्ति विषयक विचारों के मुख्य शिलाधार पर पीछे विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय की नींव रखी गई थी। इस बात को द्रविड़ संतों का पवित्र ज्ञान के रचयिता एवं गोविंदाचार्य के अनुसार भली भांति सिद्ध भी किया जा सकता है। आलवारों द्वारा मूर्तियों तथा तीर्थ स्थानों को अधिक महत्व दिए जाने का रहस्य यह जान पड़ता है कि धर्म संबंधी आध्यात्मिक भावों का इंद्रिय सुलभ प्रकाशन और उनके लिए आंतरिक प्रेरणा भी केवल तब ही संभव है जबकि उन्हें प्रतीकों के साधन द्वारा अनुभव गम्य कर लिया जाए। आलवारों ने अपने गीतों में प्रतीकों द्वारा प्राप्त ऐन्द्रिक अनुभवों को अपने आत्मानंद का आधार बनाया था। इन्होंने भगवान को सांसारिक वस्तुओं में प्रत्यक्ष देखा और मानवीय संबंधों के पूर्णतः परिचित नियमों के अनुसार उनके लिए अपने हृदय की उत्कट अभिलाषा व्यक्त करने की चेष्टा की। इन्हें इस बात में पूर्ण विश्वास था कि बिना भगवत आराधना और उसकी प्रति प्राप्ति के आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आलवारों के सच्चे वैष्णव हृदय का पता उनकी रचनाओं के प्रत्येक पंक्ति से चलता है, जिसमें उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा एवं भक्ति के भाव एक एक शब्द द्वारा व्यक्त किए गए दिख पड़ते हैं और जो इसी कारण विशेष रूप से सुंदर एवं प्रसाद गुण युक्त हैं। तिरुमलिसई अपने उपास्य देव के प्रति कहते हैं, हे नारायण, मेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो और सदा कृपा बनाए रहो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दया मेरी निजी वस्तु है और यह भी निश्चय है कि ना मैं तुम्हारे बिना और न तुम्ही मेरे बिना हो। इसी प्रकार कुलशेखर ने भी एक स्थल पर कहा है, हे भगवान, मुझे चाहे जो भी कष्ट झेलने पड़े, मैं तुम्हारे चरणों के सिवाय शरण के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं जानता। बालक की माता अपने उत्पन्न किए हुए बच्चे को चाहे क्षणिक रोष में आकर फेंक भी दे तो भी केवल उसके ही प्रेम का भूखा शिशु दूसरे को ध्यान में भी नहीं ला सकता। मेरी भी दशा ठीक वही है। तिरुमंगई आलवार की रचना पेरिया तिरुमोडी तथा स्वभावतः आंडाल की तिरुप्पा वही को पढ़ने पर जान पड़ता है कि इन आलवारों ने माधुर्य भाव के भी अनेकों पदों की रचना की है और नम्र आलवार की तिरुविरुत्तम भी ऐसी ही पंक्तियों से भरी है। नम्र आलवार ने उपास्य देव के मिलन को आध्यात्मिक सहवास की संज्ञा दी है। उसके लिए तीन प्रकार के प्रेम को मुख्य साधन ठहराया गया है, जिन्हें हम क्रमशः सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य कह सकते हैं, किंतु इन तीनों में से उन्हें माधुर्य को ही प्रधानता दी है। प्रसिद्ध है कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्त के लिए वे कभी कभी स्त्री का वेश तक धारण कर लिया करते थे। नम्र आलवार का कहना है कि अपने के प्रियतम के प्रति संदेश भेजने की उत्सुकता में विरहणी किसी दूत को न पाकर हंस को ही भेजना चाहती है, किंतु ये दुष्ट पक्षी अपनी हंसनी के साथ उड़ भागते हैं और उसके शब्दों को ध्यान तक में नहीं लाते। क्या उस नीलोत्पल श्याम वपुधारी विष्णु के विस्तृत लोक में पहुंचने के लिए हम विरहणियों के संदेशों का कोई भी अधिकार नहीं? हे बेकुंठवासिनी, हे बेकुंठवासी, तुम्हें देखने की अभिलाषा से मैं आकाश की ओर दृष्टि डालती हुई बेहोश हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ और विनय करती हूँ। तुम्हारे चरणों को अपने नेत्रों में लगा लेने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और गाती गाती थक जाया करती हूँ। उत्सुक होकर चारों ओर दृष्टिपात करती हुई झुक जाती हूँ और लज्जा के मारे पृथ्वी में गड़ सी जाती हूँ। मुझे कब तक विरह में रखोगे? इसी प्रकार आंडाल का भी कहना है कि ए संसार के लोगों, सुनो और ध्यान में रखो कि हमें उस क्षीरशायी प्रियतम के लिए श्री व्रत पालनार्थ क्या क्या करना आवश्यक है। हम ठीक सूर्योदय के होते ही स्नान कर लेंगी, घी दूध का परित्याग कर देंगी, आँखों में काजल न देंगी, केशों को फूल से न सजाएंगी, कोई अनुचित कार्य न करेंगी और न अनुपयुक्त शब्दों का ही उच्चारण करेंगी। हम प्रीति एवं दया पूर्वक औरों की वस्तुओं का वितरण करेंगी एवं नित्य इसी प्रकार के जीवन यापन में प्रसन्न रहेंगी। इलोरम बावाय आंडाल वागोदा आलवार सदा कृष्ण के प्रति प्रदर्शित गोपी भाव से ही ओतप्रोत रहा करती थी। वे उस परम भाव में इस प्रकार तन्मय रहा करती थी कि अपने गांव बिल्ली पुतूर को ही उन्होंने गोकुल मान लिया था और वहां की लड़कियों को गोपियां। भगवान के मंदिर को नंद का घर एवं भगवान की मूर्ति को ही श्री कृष्ण समझकर वे अत्यंत उत्कट प्रेम भावना के साथ गोपियों का अनुकरण करती थी। अपनी सुक्तियों के छठे दशक में गोदा ने माधव के साथ स्वप्न में होने वाले विवाह का वर्णन किया है और उसके अंतिम व 14वें में वे श्री कृष्ण के दर्शनों का प्रत्यक्ष अनुभव कर आनंदा मग्न हुई जान पड़ती हैं। इसके सिवाय उसके 5वें दशक में उन्होंने एक विरहणी की भांति किसी कोयल के प्रति अपनी विरह व्यथा का संदेश ले जाने का आग्रह भी किया है। वास्तव में इन आलवारों की आध्यात्मिक सहवास वाली भक्ति का भी प्रायः वही रूप है जो पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु की रागा भक्ति में लक्षित हुआ और जिसे गिरिधर प्रेमिका मीराबाई ने भी अपनाया।